बीबीसी इंडिया बोल तारीख 8 सितंबर दिन शनिवार। मैं हूँ वात्सल्य राय। एक तरफ दलितों की नाराजगी तो दूसरी तरफ अगलों की ललकार। तेल के बढ़ते दाम और रुपए की घटती साख। 2019 के आम चुनावों के पहले क्या चुनौतियों के चक्रव्यूह से बीजेपी को निकाल पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इंडिया बोल में आज इसी सवाल की पड़ताल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 और 1811-7001 पर। बतौर मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन और साथ हैं बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। चर्चा के लिए थोड़ा इंतजार, पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। मिस्र की एक अदालत ने एक साथ 75 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। ये लोग 5 साल पहले हुए एक इस्लामी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मौत हो गई थी। जिन्हें सजा सुनाई गई है उनमें मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन के प्रतिष्ठित समर्थक भी शामिल हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के बड़े नेता मोहम्मद बदई को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और शौकन नाम के एक फोटो पत्रकार को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। ये मामला 2013 का है, जब काहिरा के रब्बा स्क्वायर पर प्रदर्शन हुए थे और पुलिस की कार्रवाई में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों के जवाबी हमले में कुछ सुरक्षाकर्मियों की भी मौत हुई थी और प्रदर्शन में शामिल लोगों पर हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। यमन में शांति स्थापित करने के लिए सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने की संयुक्त राष्ट्र की कोशिश हूथी विद्रोहियों की सहभागिता के बिना खत्म हो गई है। जिनेवा में हुई इस बैठक में हूथी विद्रोहियों का प्रतिनिधिमंडल शामिल नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र के राजदूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने हूथी विद्रोहियों के न आने का कोई कारण बताने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि यमन सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बातचीत उपयोगी रही। उन्होंने कहा कि शांति की दिशा में एक शुरुआत कर दी गई है। यमन कई वर्षों से गृह युद्ध की चपेट में है, जिसमें हजारों की संख्या में आम लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के राजदूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा,
शांति
की राह बनाने की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि उस रूप में नहीं जैसा हम चाहते थे, लेकिन ये शुरू हो गया है। हमने तय कार्यक्रम के मुताबिक 3 दिनों तक यमन प्रतिनिधिमंडल के गवर्नर के साथ बेहद उपयोगी चर्चा की। ये थे संयुक्त राष्ट्र के राजदूत मार्टिन ग्रिफिथ्स के शब्द। अमेरिका के कैलिफोर्निया में समुद्र में जमा प्लास्टिक कचरे को साफ करने का महत्वाकांक्षी अभियान चलाया जा रहा है। प्लास्टिक कचरे को 1 किलोमीटर लंबी विशालकाय सांप सरीखी और यू के आकार वाली फ्लोटिंग ट्यूब की मदद से निकाला जाएगा। इस ट्यूब से नीचे एक तीन मीटर लंबी स्क्रीन लटक रही होगी, जिसमें कचरा फंसा कर लाया जाएगा और फिर उसे एक जहाज में लादा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब $20 मिलियन यानी $144 करोड़ खर्च होंगे। वैज्ञानिक इसे बेहद ज़रूरी कदम बता रहे हैं, लेकिन पर्यावरणविदों ने समुद्री जीवों के जीवन पर चिंता जताई है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक लॉरेंट लेब्रेटोन ने बताया, हमें यहाँ से 70, 80 और 90 के दशक का प्लास्टिक कचरा मिला है। हमें ऐसे प्लास्टिक के टुकड़े भी मिले हैं जिन पर अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए हैं। इसमें चीनी, जापानी और अंग्रेजी भाषाएं प्रमुख हैं। वैज्ञानिक लॉरेंट लेब्रेटोन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगान सरकार ने राजधानी काबुल में अल्पसंख्यक शिया समुदाय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए उपायों का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में हाल के दिनों में शिया समुदायों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बताया कि शिया समुदाय के रिहायशी इलाके पश्चिमी काबुल में और सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे और नाकों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान में एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने धार्मिक भेदभाव का विरोध करते हुए सरकार के विशेषज्ञों के समूह से इस्तीफा दे दिया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ाने वाले प्रोफेसर इमरान रसूल ने ट्विटर पर लिखा कि वह साथी अर्थशास्त्री आतिफ मियां को सलाहकार समूह से हटाने के सरकार के फैसले से पूरी तरह असहमत हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आतिफ मियां अहमदी समुदाय से हैं, जो पाकिस्तान में भेदभाव का शिकार होता रहा है। इस घटना के विरोध में एक और प्रोफेसर इजाज ख्वाजा ने भी इस्तीफा दे दिया है। सीरियाई प्रांत इदलिब में विद्रोहियों के खिलाफ सीरिया और रूसी लड़ाकू विमानों की बमबारी जारी है। एक दिन पहले ही ईरान और रूस ने कहा था कि वे सीरिया में विद्रोहियों के आखिरी मजबूत गढ़ पर हमला जारी रखेंगे। सीरिया की सरकारी सेनाएं ईरान और रूस के समर्थन से इदलिब की सीमा पर जमा हो रही हैं। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। एक तरफ दलितों की नाराजगी तो दूसरी तरफ अगलों की ललकार, तेल के बढ़ते दाम और रुपए की घटती साख। 2019 के आम चुनावों के पहले क्या चुनौतियों के चक्रव्यूह से बीजेपी को निकाल पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस विषय पर इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन और बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। स्वागत है आपका, स्वागत तमाम श्रोताओं का भी जो हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई है। हम जिन सवालों की बात कर रहे हैं बीजेपी की बैठक में, उन पर कितनी चर्चा हुई, हम ये पता करेंगे राधिका जी से और नितिन जी से। लेकिन पहले आपको याद दिला दें कि करीब 5 साल पहले यानी साल 2013 और 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, तब उनकी पार्टी उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कई बार मौन मोहन सिंह कहती थी। लेकिन कल एक कार्यक्रम में मनमोहन सिंह बोले और उनकी बातें मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ने भी सुनी होंगी। मनमोहन सिंह ने क्या कहा वो सुनिए।
पीपल आर नॉट इम्प्रेस्ड विद द फिगर्स दैट आर बीइंग पुट आउट बाय द मोदी गवर्नमेंट टू जस्टिफाई द क्रिएशन ऑफ लार्ज नंबर।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे थे कि बड़े पैमाने पर रोजगारों के सृजन के लिए मोदी सरकार की ओर से जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, लोग उससे प्रभावित नहीं है। नोटबंदी और हड़बड़ी में जीएसटी लागू किए जाने से उपक्रमों पर बुरा प्रभाव हुआ है। विदेश में कथित तौर पर काले धन के तौर पर रखे गए लाखों डॉलरों को वापस लाने के लिए भी कुछ ठोस नहीं हुआ है। मनमोहन सिंह ने शिक्षण संस्थानों की स्थिति और पड़ोसियों के साथ संबंधों की भी बात की और इन तमाम मुद्दों पर एक राष्ट्रीय बहस की जरूरत बताई। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक श्रोता की बात जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात।
मंगलाराम बिश्नोई, सांकड़ सांचो, जिला जालौर, राजस्थान से बोल रहा हूँ सर।
जी बिश्नोई जी, क्या कहना चाहते हैं आप?
हाँ, मैं सब कुछ कहना चाहता हूँ साहब, आप विशेषज्ञ से पहले भी आप सुन लीजिए।
जी,
दरअसल ये जो चक्रव्यूह की जो बात कर रहे हैं
जी,
ये महज आभासी है।
जी,
आभासी इसलिए है कि दलितों की जो नाराजगी और अगड़ों की ललकार
जी,
ये कुछ नहीं है बल्कि नूरक है। इसमें कोई दूरकुश्ती, कोई इसमें विरोधी शामिल नहीं होगा, सारे इसका अपना अनुसरण करेंगे और मोदी जी कहे चाहेंगे उस तरह से करेंगे। तो ये जो बात है कि दिखावटी नूरकुश्ती, और
ये नूरकुश्ती है विष्णुई साहब को ऐसा लगता है। नितिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। साल 2003 और 2004 को हम याद करते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चुनाव मैं जा रही थी, चुनावी वर्ष था, तब एक फील गुड की बात होती
जी थी। और 2003 का जो 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 राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी
जी,
उसमें वेंकैया नायडू जो अभी मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट है, वो तब प्रेसिडेंट थे पार्टी के, और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट है और अगला चुनाव हम और ज्यादा ओवरवेलमिंग मैंडेट से जीतने वाले हैं।
तो आज आप थे बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो दो दिन की बैठक शुरू हुई, आज आपने क्या मूड फील किया, वहाँ फील गुड था या कुछ और था?
देखिए वासिले, सबसे पहली बात तो ये कि जो जैसा कि अभी हमारे श्रोताओं ने सुना मनमोहन सिंह जी को, जो कल बोले और काफ़ी खुलकर बोले, जो मैं कहूँगा और बहुत लंबे समय के बाद खुलकर बोले, मुझे लगा कि उसका असर आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर थोड़ा कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ देयर माइंड्स में था, क्योंकि जिस तरह से अटैक किया है कांग्रेस पर डायरेक्ट, यानी जो ये कहना कि हम लोग मेकिंग इंडिया के लिए काम कर रहे हैं यानी बीजेपी वालों का, और जो कांग्रेस है वो ब्रेकिंग इंडिया पे काम कर रही है जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसका मतलब है उसका जवाब देने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह का निशाना शायद सही बैठा है।
जी राधिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भी वहीं से आ रही हैं इस समय, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि 2014 में जितनी सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2019 के आम चुनाव में बीजेपी उससे ज्यादा जीतेगी। तो क्या लगता है, ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है? क्योंकि हम जिन चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को उनकी जानकारी ना हो।
बिल्कुल उनकी जानकारी है और अंदर अंदर उनकी चर्चा भी होती है, उनको काफ़ी कंसर्न भी है, थोड़ा बहुत आक्रोश भी है, खासकर ये पेट्रोल के दाम जिस ढंग से बढ़ रहे हैं। और आपने जिक्र किया, ये एक श्रोता ने कहा था नूरा कुश्ती है, अगर नूरा कुश्ती होती तो कलराज मिश्रा जैसे वरिष्ठ नेता जो श्रावस्ती से एमपी हैं, उन्होंने देवरिया से एमपी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पे क्यों कहा कि हमें सवर्णों का भी अगड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए और एक तरफा नीति नहीं बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कलराज मिश्रा जी तो पार्टी के अंदर ही हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर जो कंसर्न्स हैं उसको अपने ट्विटर के जरिए वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो जितने भी आपने विषय गिनाए हैं सब की चर्चा होती है अंदर अंदर के डिस्कशंस में, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें तो खुल्लम खुल्ला डिस्कशंस होना ही बंद हो गया। एक ज़माने में ज़रूर होता था, आलोचना भी होती थी, काफ़ी तीखी आलोचना, और वो बाहर निकल के हम लोग तक पहुंच भी जाता था, लेकिन अभी नहीं। अभी जो हो रहा है वो जो गुड़ी गुड़ी बातें हैं वो ही हो रहे हैं, और अमित शाह का एक ही लक्ष्य है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया रखना।
इसीलिए ये बात हो रही है कि हम जितना पहले जीत के आए थे, यानी 282 तक पहुंचे थे ये पिछली बार, उससे आगे ये जाएंगे। एक और श्रोता हमारे साथ है, हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
हेलो
जी, जी बताइए।
जी नमस्कार सर।
नमस्कार, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
मेरा नाम रविंद्र कुमार तिवारी हुआ, मैं झारखंड गिरिडीह से बोल रहा हूँ।
जी बताइए रविंद्र जी, क्या कहना है आपका?
मेरा कहना है कि कुछ निचले पर जो है सो जरूर रह गई है जी सरकार में, बाकी सब ठीक है।
जी कुछ कमियां हैं बाकी ठीक है। एक और श्रोता हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं।
हेलो
जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
हेलो
जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ? अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना नाम बताइए और अपनी बात को रखिए।
हाँ भाई साहब, पहले तो आपको सादर दंडवत प्रणाम।
जी हमारा भी नमस्कार आपको है, अपनी बात रखिए।
हाँ मैं अनिल डोबरिया द्वारिकाल ब्लॉक के वासी गांव जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ भाई साहब।
जी बोलिए अनिल जी, क्या कहना है आपका?
पहले तो भाई साहब जो ये आरक्षण की व्यवस्था है बिल्कुल खत्म होनी चाहिए थी, और मोदी जी ने जो है 20-21% जो दलित है उनको रिझाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था कराई, नंबर वन। नंबर दो बात जो है भाई साहब, ये आरक्षण की सुविधा गरीब ब्राह्मणों को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि दलित लोग तो अब उनको
जी पूरा आरक्षण। अनिल जी, मोदी जी ने आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया, एक SC/ST एक्ट था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक आदेश दिया था, उसके बाद लोकसभा ने उसे दूसरी तरीके से सामने रखा। आरक्षण की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है जहां तक मेरी जानकारी है राधिका जी, लेकिन ये शायद जिस बात को कहना चाह रहे हैं कि अगड़ी जातियों में एक नाराजगी है
जी।
पेट्रोल के दाम बढ़ने पर, जैसा आपने खुद कहा कि आज बंबई में लगभग 87 रुपए से ऊपर चला गया है दाम, और दिल्ली में भी 80 का आंकड़ा जो एक मनोवैज्ञानिक आंकड़ा अभी तक माना जाता था कि 80 के नीचे है, रुपया भी बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है, और कई आर्थिक विश्लेषकों से हमारी बात भी हुई है, उनका कहना है कि 75 का मार्क भी टच कर सकता है डॉलर के मुकाबले।
बिल्कुल।
तो ये सारी जो समस्याएं हैं भारतीय जनता पार्टी की नज़र में, क्योंकि उनका कोर वोटर अगर नाराज हो जाता है तो उनके लिए दिक्कत है। जो जातियां नाराज इस समय बताई जा रही हैं, पता नहीं वो नूरा कुश्ती है या वास्तविक लड़ाई है, और जो मिडिल क्लास है जिसने बीजेपी को यहां तक पहुंचाया है, अगर दोनों नाराज हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए खतरे की कितनी बड़ी घंटी बजती है।
खतरे की घंटी तो बजेगी ही बजेगी। आपने डॉलर के गिरते हुए रेट का रुपए के तुलने में बात किया है, ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा। और आपको याद है कि 2014 के पहले मोदी जी अपने हर भाषण में इसका जिक्र करते थे और इसका इम्पैक्ट भी हुआ। اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے اس جس میں چھاتر بھی ہیں اور سیلف امپلائڈ لوگ بھی ہیں, سب کو تو جاب سیکرز بھی ہیں, انہوں نے اتنے بڑے پیمانے میں مودی جی کو ووٹ کیا کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں کچھ وشواس تھا کہ اچھے دن آخر کار آنے والے ہیں. تو یہ جو ہے یہ چھاتراؤں کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گا کیونکہ
تو یہ نعرہ بھی بی جے پی کو کہیں چبھ رہا ہے جو اچھے دن آنے والے ہیں,
چبھ رہا ہے کیونکہ اتر پردیش وغیرہ میں اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں,
یہ پیروڈی بن رہی ہیں,
پیروڈی بن رہے ہیں یہ نعرہ کا, تو ضرور چبھے گا. اور آپ نے وہ دوسرا کسانوں کا ناراضگی بھی ہے بالکل, آئی مین کئی ایم ایس پی کے دام ٹھیک طرح سے مل نہیں رہے ہیں, حالانکہ سرکار نے بڑھایا ہے, آپ سرکار کو دوشی نہیں کہوں گی اس پہ, لیکن پہنچتا ہے کہ نہیں
یہ بڑا سوال ہے.
یہی ہے سوال.
ایک اور شروتا ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. جی اپنا نام بتائیے اور اپنی بات رکھیے.
ہاں جی سر, میں پورست سے ارون بگڑے بول رہا ہوں.
جی ارون جی کیا کہنا ہے آپ کا بتائیے.
ہاں 19 میں جو چناؤ ہوں گے
جی
اس میں مودی جی جو آج کی ان کی جو ہے اس سے بھی زیادہ میجورٹی سے آئیں گے. جی
جی
ہاں جی
یہ آپ کا ایسا آکلن ہے. ایک اور شروتا ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات بھی سنتے ہیں.
ہلو
جی اپنا نام بتائیے اپنی بات رکھیے.
جی سر میں اور بہاری پانڈے بلرام پور یوپی سے بول رہا ہوں.
جی پانڈے جی کیا کہنا ہے آپ کا.
جی سر جی جہاں تک ابھی تک مجھے جانکاری ہے
جی
2014 کے بعد جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی
جی
اس کے بعد جیسے کانگریس آروپ لگا رہی ہے انیہ پارٹیاں آروپ لگا رہی ہیں.
جی اپنی بات رکھیے سنکشیپ میں رکھیے. جی
پہلے نمبر جاٹ آندولن, مراٹھا آندولن, پٹیل آندولن, کتنے جاتیوں میں بی جے پی بانٹ چکی ہے سب کو.
جی آپ کا یہ آروپ ہے کہ بی جے پی کئی سارے طبقوں کو بانٹ چکی ہے. نتن جی میں آپ سے بات آپ کو شامل کرنا چاہوں گا چرچا میں ایک بار پھر. شروعاتی سال جب تھے سرکار کے تب یہ کہا جاتا تھا کہ وپکش نے واک اوور دے دیا, لیکن اب چنوتیاں کہیں نہ کہیں ان کے ساتھیوں کے بیچ میں سے بھی آ رہی ہیں. جیسے پہلا جو اوشواس پرستاو تھا وہ چندرا بابو نائیڈو کی پارٹی ٹی ڈی پی لے کر آئی, اپیندر کشواہا کے بیان کھیر والے لگاتار چرچا میں ہے, اور وپکش بھی ایک دھڑے پر آ رہا ہے. اور یہ بھی جس طرح کا ابھی پانڈے جی ہمارے جو شروتا ہیں وہ کہہ رہے تھے, یہ آروپ بھی لگ رہا ہے کہ یہ آندولن کہیں نہ کہیں جو ہو رہے ہیں, چاہے وہ مراٹھا آندولن ہو, جاٹ آندولن ہو, سورن آندولن ہو, دلت آندولن ہو, اس کو لے کر بھی کوشچن اٹھایا جا رہا ہے, بھارتی جنتا پارٹی کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو کیا بی جے پی ان سب سوالوں پر بات کر رہی ہے یا کیول جو آج کہا گیا کہ ہم وکاس کے نعرے پر آگے جائیں گے.
دیکھیے بی جے پی مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ بی جے پی نے امید نہیں کی تھی کہ ان دا لیڈ اپ ان دا رن اپ ٹو دا 2019 الیکشن, 2019 کے الیکشن کی طرف جب ہم ایک دم قریب آ چکے ہوں گے اس کے آخری 18 مہینے یا 24 مہینے میں اس طرح کے مسئلے اٹھیں گے.
جی
مثال کے طور پر دلتوں کا معاملہ, یا اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو کانسٹیٹیوشنل جو تمام ایشوز سمویدھانک مدعے اٹھے ہیں, مثال کے طور پر 377 کا معاملہ, پارٹی نے آج تک اس کے بعد سے کچھ نہیں کہا ہے.
جی
سب سے بڑی بات یہ ہے واتسلیہ اس پورے پرکریا میں کہ یہ جو راشٹریہ کارکارنی کی بیٹھک ہوئی ہے آج اور ابھی موجودہ جو بی جے پی ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو آگے پانچ راجیہ کے چناؤ ہیں یہ ابھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور ایک تھوڑا سا پینک یا تھوڑا سا میں کہوں گا کہ ایک انگزائٹی ایک کوتوہل ہے پارٹی میں, وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ چناؤ ٹھیک سے نکل پا رہے ہیں کہ نہیں,
کیونکہ
اس میں تین پردیش ان کے پاس ہیں اور وہ بڑے پردیش ہیں راجستھان
اور تینوں پردیشوں سے جو رپورٹ آ رہی ہیں جو سروے آ رہے ہیں وہ بہت اتساہ بڑھانے والے نہیں کہے جا رہے ہیں. نتن جی ایک اور شروتا ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. جی اپنا نام بتائیے اور اپنی بات رکھیے. جی اپنا ریڈیو اگر آپ بند کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہم آپ کو سن پائیں گے. اپنا نام بتائیے اپنی بات رکھیے. ایک اور شروتا ہے ان کی بات سنتے ہیں. جی اپنا نام بتائیے.
رگھناتھ یادو سر.
جی رگھناتھ جی کیا کہنا ہے آپ کا.
سر یہی کہنا ہے کہ جو اس سمے مہنگائی کا مدعا ہے اور یہ ST/ST ایکٹ ویرودھ کا ہے یہ سب یو پی میں اور مدھیہ پردیش میں کافی دیکھنے کو ملا ہے.
جی
تو اس پر یہ سرکار تھوڑا تو بیک فٹ پر آ ہی رہی ہے.
سرکار بیک فٹ پر آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے رگھناتھ جی. ایک اور شروتا ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات بھی سنتے ہیں. جی اپنا نام بتائیے اپنی بات رکھیے.
بی ایس راجپوت.
جی
اتر پردیش مین پوری سے.
جی بتائیے راجپوت صاحب کیا کہنا ہے آپ کا.
ہاں بات یہ ہے کہ اس میں جو آرکشن والا تو وہ تو ہے ہی جو کچھ ہے, لیکن जो बीजेपी अब जो आगे को बढ़ रही है, कह रही है कि हम बढ़ के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि रुपया की कीमत बहुत नीचे चलती जा रही है
जी,
और ये डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत नीचे जा रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे जनता बहुत त्रस्त है
जी। ये श्रोता है राधिका जी, मतलब ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, ये दिल की बात करते हैं, शायद बनावट नहीं उतनी आती है जितना कि कई बार राजनीतिक विश्लेषक तो तोल मोल के कई बार बोलते हैं, आजकल ज्यादा देखा जा रहा है इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां कई हैं, नितिन जी ने जैसे बात की चुनावी साल है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तेलंगाना का भी साथ में हो सकता है, 5वां राज्य तेलंगाना है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के पास हर चुनौती की अभी तक एक कार्ड देखने में आ रही है, 2013-14 से नरेंद्र मोदी का चेहरा, नगर पालिका पंचायत हर चुनाव उनके नाम पर लड़ा जा रहा है। क्या लगता है कि ये सारी चुनौतियां, एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर मिलेगा?
जी, अगर आप प्रदेश चुनावों की जिक्र करें तो उसमें भी यही कहा जा रहा है जो रणनीतिकार हैं पार्टी के, कि आखिरकार हमारे पास मोदी कार्ड है, अंत में वो ही काम करेगा। कर्नाटका में भी काम किया है, कर्नाटका में पूरी तरह काम नहीं किया है, वो लोग मेजॉरिटी की उम्मीद कर रहे थे, मेजॉरिटी से थोड़ा काफ़ी कम,
लेकिन कर्नाटक आप कवर कर रही थी, हमारी आपसे बात हुई थी, उस समय आपने कहा था कि यहां बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मोदी की रैलियां शुरू होंगी और माहौल बदलेगा।
कुछ हद तक बदला, ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं, पर इस ऐसे जगह में बदला जहां पे इनके लिंगायत कास्ट के वोट्स बहुत बड़े पैमाने में थे, बाकी जगह जहाँ पे वोकलिगा और ओबीसी वोट्स ज़्यादा थे वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो ऑफकोर्स वो प्रदेश का चुनाव था तो कास्ट के इस पे लड़ा गया, लेकिन मोदी का जो फैक्टर है वो जो कास्ट के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो पूरी तरह ओवरकम नहीं कर पाए, तो ये जो हारे वाले 3-4-5 चुनाव हैं इसमें फिर मोदी कार्ड ही खेलेगी बीजेपी, और हमें देखना होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी क्या मोदी उसको पार कर पाएंगे, राजस्थान में
क्योंकि गुजरात में बड़ी दिक्कत हुई उनको, 99 पर बीजेपी रुक गई,
अटक गए, वो भी आखिरी चरण में जो सीट्स हुआ वहीं पे उन्हों वो कामयाब रहे। राजस्थान में क्या वसुंधरा जी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है ऐसे सुनने में आ रहा है, क्या वो मोदी फैक्टर उसको काउंटर कर पाएगी, क्योंकि वसुंधरा जी अपने बलबूते पे काफी पॉपुलर नेता हैं लेकिन अब वो बात नहीं रही। और रही बात तेलंगाना की, तो वहाँ पे तो केस चंद्रशेखर राव ही हैं, तो वहाँ पे मोदी फैक्टर कैसा काम करेगा मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का
जी
बहुत कुछ नहीं है।
जी नितिन जी, आप एक सवाल पूछना चाह रहे हैं।
एक बहुत संक्षेप में सवाल आपसे जानना चाहता था, 2004 में लौटते हैं, इंडिया शाइनिंग कैंपेन, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी उनके सिपहसालार, आरएसएस की बैकिंग सब कुछ, और अभी ये रनअप। आपने उस इलेक्शन को भी बहुत बारीकी से कवर किया था, हम लोग तो बहुत जूनियर रिपोर्टर थे तब में और अब में, जो कॉन्फिडेंस का लेवल है पार्टी में या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, उसमें क्या कोई फर्क दिखती है या क्या फर्क है?
उस समय भी कॉन्फिडेंस लेवल्स काफी हाई थे, क्योंकि प्रमोद महाजन जैसे चतुर
कैंपेन मैनेजर
थे, तो वो मनोबल बढ़ा के रखने का बहुत प्रयास किया। लेकिन मैं यूपी में मैं बहुत दौरा किया और वहाँ पे दो चीज मैंने ऑब्जर्व किया, एक तो काडर का मोराल काफी डाउन था क्योंकि उनको कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि हम हारने वाले हैं, और आरएसएस पूरी तरह कोऑपरेट नहीं किया क्योंकि वो उनको अटल जी के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। इस वक्त ये फर्क है कि मेरे ख्याल में आरएसएस उतनी उभी नहीं है मोदी जी के से
जी, आरएसएस सेम पेज पर अभी फिलहाल नजर आती है ऐसा देखने में आ रहा है कम से कम, और लोगों का भी कहना है। हमें सोशल मीडिया पर भी कई कमेंट मिले हैं, फेसबुक की कुछ टिप्पणी मैं पढ़ देता हूँ। सुरेंद्र सिंह लिखते हैं कि ये सब मोदी की कूटनीति का हिस्सा है, वोट बैंक कम नहीं होगा। सैयद सलमान की राय है, सरकार अगर पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ाती रही तो इसकी हार निश्चित है। राजीव अग्रवाल लिखते हैं कि अति आत्मविश्वास में है मोदी जी, मुंह की खानी पड़ सकती है। हेम सिंह लिखते हैं कि 2019 में भी मोदी जी को कोई खतरा नहीं है। एक और श्रोता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अब अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
हरीश कुमार, जिला बरेली, ग्राम पचतौर से बोल रहा हूँ।
जी बताइए
सर, जो मोदी सरकार का वादा था किसानों की आय दूनी हो जाएगी
जी,
किसानों की आय तो साथ दूनी हुई नहीं
जी,
और गन्ने का साथ ये हाल है कि अभी गन्ने का पैसा ही नहीं मिला है खानों
जी। एक और श्रोता,
एक साल गन्ने उगाने में लगे, एक साल उसको पैसे लेने में लगेंगे
जी। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। एक और श्रोता इस बीच हमारे साथ है। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
जी कनिकरण कुमार सिन्हा बिहार से बोल रहे हैं, झाझा से सर।
जी बताइए।
हाँ, माननीय प्रधानमंत्री खलनायकों का खलनायक हीरो का हीरो है सर, 2019 उनका उनका एकदम कहीं बहुत अच्छा रहेगा सर
जी। ये आपका अपना एक आकलन है राधिका जी, लोगों की आप जो बात सुन रही हैं, कमेंट मिले जुले गए हैं, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि 2019 में अच्छे दिन फिर आएंगे मोदी सरकार की, जहां तक बात है कुछ लोग नाराजगी की बात भी कर रहे हैं, तो क्या ये जो कुछ इंडिकेशन है रन अप टू 2009?
अगर ये सब ऑब्जेक्टिव हैं तो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट कर रहे हैं मोदी को वो और बड़े पैमाने में हैं, जो अपोज कर रहे हैं वो मुझे कम ही स्वर सुनने को मिला है। तो हमें कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि मैं भी कई दफ़ा अरिथमेटिक मैथमेटिक्स करती हूँ और मुझे लगा कि इतना बड़ा मेजॉरिटी से कितना गिरेगी आखिरकार बीजेपी, तो मैं भी पूरी तरह कन्विंस नहीं हूँ कि बीजेपी निकलने वाली है। हो सकता है जो 2004 जैसे का रेपिटेशन हो, जहां बीजेपी और जो विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो उसमें थोड़ा कम मात्रा में वो दूसरी साइड आगे निकल सकती है, लेकिन कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि मोदी जी का करिश्मा है। हम यूपी में भी समझे कि शायद नहीं काम करेगा, लेकिन बहुत सफलता से काम किया है, तो बीजेपी को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं करेंगे, कर सकते हैं, शायद वापस आ भी जाए
जी। नितिन श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी के कई नेताओं से आपकी बात होती रहती है, बिहार चुनाव भी आपने करीब से देखा, दिल्ली का भी एक चुनाव देखा, जो दो बड़े झटके नरेंद्र मोदी के लिए माने जाते हैं, इस बीच में दिक्कत विपक्ष के सामने क्या है? क्या ये जो चुनौतियां हैं उसको वो भुना नहीं पा रहे हैं, या एकजुटता नहीं है, या मोदी करिश्मा इन सब चीजों पर भारी पड़ जा रहा है?
वात्सल्य, मुझे लगता है विपक्ष की, मौजूदा विपक्ष की भारत में सबसे बड़ी दिक्कत वो खुद है। वो इस बात का एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी दरअसल जो जिम्मेदारी है, अगर वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो उनकी विपक्ष होने की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और जितने मौके, मुझे लगता है अगर मैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करूं, डीमोनेटाइजेशन से लेकर दलित आंदोलन से लेकर पेट्रोल प्राइस से लेकर, अभी हमने गन्ना किसान को सुना, फार्मर्स के इश्यूज से लेकर, जो मुद्दे हैं इनमें से मुझे लगता है एक भी मुद्दा विपक्ष उस तरह से नहीं भुना पाया है जैसे विपक्ष में रही भाजपा ने भुनाया था यूपीए मनमोहन सिंह के खिलाफ
जी। किसी भी चीज़ पर रिएक्शन के लिए मेरे ख्याल से विपक्ष को एक लंबा टाइम लगता है, एक रिएक्शन टाइम भी बहुत ज्यादा है। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं।
हेलो
जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
मैं सुरेश चंद वर्मा कैमूर से बोल रहा हूँ
जी। सुरेश जी,
हाँ, हमारा कहना है कि मोदी जी जो लाल किला से भाषण दिए हैं कि 6 करोड़ गरीबों का मैंने राशन खत्म कर दिया है
जी।
हेलो
जी,
हाँ, तो 6 करोड़ जो गरीब राशन से वंचित कर दिए हैं मोदी जी, वो 6 करोड़ लोगों का वोट उनको नहीं मिलेगा। अब की बार मोदी जी का सफाया है, उन गरीबों को क्या सफाया कर रहे हैं
जी। शायद उन्होंने राशन में जो अनियमितताएं थी उनको खत्म करने की उन्होंने बात की थी। राधिका जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि 2019 की लगातार चर्चाएं होती हैं और लोग हर चुनाव को अपने हिसाब से देखना भी पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी 2019 में जाएगी, क्या वो 2013 वाला कॉन्फिडेंस लेके जाएगी, क्या केवल एक नरेंद्र मोदी और अच्छे दिन के नारे के साथ जाएगी, या कुछ नारा बदला हुआ होगा, नरेंद्र मोदी के साथ कुछ और चेहरे भी होंगे साथ?
नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ कोई और चेहरा नहीं होगा, अमित शाह तो हैं ही हैं, वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं वगैरह वगैरह, लेकिन चेहरा तो एकमात्र मोदी जी का ही होगा, दूसरा किसी को नहीं लाएंगे, और ये उनके लिए बहुत बड़ा,
क्योंकि उस समय जो नारे दिए गए थे अच्छे दिन के साथ, ये भी था कि बहुत हुई महंगाई की मार, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे, या इस तरह की दिक्कत है, रुपया नीचे गिर रहा है, अर्थव्यवस्था की बात, वो चमत्कार नहीं दिखे हैं, तो नारा बदलेगा, चेहरा तो भले ही ना बदले।
नारा तो कैसे बदल सकता है, वो थोड़ी ना कहेंगे कि पेट्रोल के दाम ज्यादा हो गए हैं या किसान मर रहे हैं या जो भी है,
लेकिन एक रिपोर्ट कार्ड तो उन्हें रखना होगा।
उन्होंने कहा था कि मैं पाई का हिसाब दूंगा, आपको याद है, अब कहीं कोई हिसाब नहीं आ रहा है उनसे, रफेल डील तक पे कुछ बोल नहीं रही हैं, तो हमें देखना होगा, ये बहुत ही बड़ी चुनौती है मोदी के लिए।
नितिन जी, 30 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका आकलन, फाइनल कमेंट।
मेरे हिसाब से वात्सल्य, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में 3 लोग बहुत पावरफुल हैं, पहले नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे नरेंद्र मोदी हैं, और तीसरे नरेंद्र मोदी के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हैं, और ऐसा ही होगा 2019 के आम चुनाव तक।
यानी भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी आरोप लगाते हैं कि 2.5 लोगों की पार्टी है, और जिस तरह से सूरत बनती नजर आ रही है, और फिलहाल यही है कि सबसे बड़ा चेहरा 2019 के लिए भारतीय जनता के पार्टी के पास नरेंद्र मोदी, और क्या वो इस चुनौती से भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकाल पाएंगे, वक्त ही बताएगा। वक्त हमारे पास इतना ही है। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए राधिका जी, नितिन जी, आपका बहुत शुक्रिया। उन सभी श्रोताओं का आभार जो कार्यक्रम में जुड़े, जिन्हें मौका नहीं मिल सका उनसे माफी। स्टूडियो का संचालन किया दीपक जसरोटिया ने। अगले सप्ताह फिर ऐसे ही किसी प्रमुख विषय पर इंडिया बोल में होगी चर्चा। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। फिलहाल वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।